ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।
सादत हसन मंटो का फसाना फातो। तेज बुखार की हालत में उसे अपनी छाती पर कोई ठंडी चीज रेंगती महसूस हुई। उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। जब वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ तो उसका चेहरा बुखार की शिद्दत के बायस तिमतिमा रहा था। उसने आंखें खोली और देखा फातो फर्श पर बैठी पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर लगा रही थी। जब फातो ने उसके माथे पर से कपड़ा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने उसे पकड़ लिया और अपने सीने पर रखकर होले होले प्यार से अपना हाथ उस पर फेरना शुरू कर दिया। उसकी सुर्ख आंखें दो अंगारे बनकर देर तक फातो को देखती रही। वो इस दहकती हुई टिकटिकी की ताब ना ले सकी और हाथ छुड़ाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। इस पर वो उठकर बिस्तर में बैठ गया। फातो से, जिसका असल नाम फातिमा था, उसको गैर महसूस तौर पर मोहब्बत हो गई थी। हालांकि वो जानता था कि वो किराएदारों अतवार की अच्छी नहीं है। मोहल्ले में जितने लौंडे हैं उससे इश्क लड़ा चुके हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी उसको फातो से मोहब्बत हो गई थी। वो अगर बुखार में मुबतला ना होता तो यकीनन उससे अपने इस जज्बे का इजहार कभी ना किया होता, मगर तेज बुखार के बाइस उसको अपने दिलो दिमाग पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। यही वजह है कि उसने ऊंची आवाज में फातो को पुकारना शुरू किया, इधर आओ, मेरी तरफ देखो, जानती हो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, बहुत बुरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। इस तरह तुम्हारी मोहब्बत में फंस गया हूँ जैसे कोई दलदल में फंस जाए। मैं जानता हूँ तुम क्या हो, मैं जानता हूँ कि तुम इस काबिल तो नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए, मगर ये सब कुछ जानते बूझते तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लानत हो मुझ पर। लेकिन छोड़ इन बातों को और मेरी तरफ देखो, मैं बुखार के अलावा तुम्हारी मोहब्बत में भी फूका जा रहा हूँ फातो। मैं इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया और उस पर हिजाइनी कैफियत तारी हो गई। उसने डॉक्टर मुकंदलाल भाटिया से कोनिन के नुकसानात पर बहस शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद वो अपनी माँ से, जो वहां मौजूद नहीं थी, मुखातिब हुआ। बीबी जी, मेरे दिमाग में बेशुमार ख्यालात आ रहे हैं, आप हैरान क्यों होती हैं? मुझे फातो से मोहब्बत है, इसी फातो से जो हमारे पड़ोस में पंचबंधु के यहाँ मुलाजिम थी, और जब आपकी मुलाजिम है, आप नहीं जानती इस लड़की ने मुझे कितना जलील करा दिया है। ये मोहब्बत नहीं, खसरा है, नहीं, खसरे से बढ़ चढ़कर है, इसका कोई इलाज नहीं। मुझे तमाम जिल्लत बर्दाश्त करनी होगी, सारी गली का कूड़ा करकट अपने सर पर उठाना होगा, ये सब कुछ होके रहेगा, ये सब कुछ होके रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज कमजोर होती गई और इस पर गुंदगी तारी हो गई। उसकी आंखें नीम हुआ थी, ऐसा लगता था कि उसकी पलकों पर बोझ सा आन पड़ा है। फातो पलंग के पास फर्श पर बैठी उसकी बेजोड़ हिजाइनी गुफ्तगू सुनती रही, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। वो ऐसे बीमारों की कई मर्तबा तिमारदारी कर चुकी थी। बुखार की हालत में जब उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया तो फातो ने उसके मुतल्लिक क्या महसूस किया कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उसका गोश्त भरा चेहरा जज्बात से बिल्कुल आरी था। मुमकिन है कि उसके दिल के किसी गोशे में हल्की सी सरसराहट पैदा हुई हो, मगर ये चर्बी की तरह से निकलकर बाहर ना आ सकी। फातो ने रुमाल निचोड़कर ताजा पानी भिगोया, उसके माथे पर रखने के लिए उठी। अब की बार इसलिए उसे उठना पड़ा क्योंकि उसने करवट बदली थी। जब उसने आहिस्ता से उधर से मुड़कर उसके माथे पर गीला रुमाल जमाया तो उसकी नीम व आंखें यूं खुली जैसे कि लाल लाल जख्मों के मुंह टांके अधेड़ जाने में खुल जाते हैं। उसने एक लम्हे के लिए फातो के झुके हुए चेहरे की तरफ देखा, उसके गाल थोड़े से नीचे लटक आए थे। फिर फिर एकदम जाने उस पर क्या वहशत सवार हुई कि उसने फातो को अपने दोनों बाजू में जकड़कर इस जोर से अपनी छाती के साथ भींचा कि उसकी रीढ़ की हड्डी कड़कड़ बोल उठी। फिर उसने उसको अपनी रानों पर लिटाकर उसके मोटे और गुदगुदे होठों पर इस जोर से अपने तपते हुए होंठ पेवस्त किए जैसे वो उन्हें दागना चाहता है। उसकी गिरफ्त इस कदर जबरदस्त थी कि फातो कोशिश के बावजूद खुद को आजाद ना करा सकी। उसके होठ देर तक उसके होठों पर इस्त्री करते रहे। फिर अचानक हांफते हुए उसने फातो को एक झटके से अलग कर दिया और उठकर बिस्तर में यूं बैठ गया जैसे उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। फातो एक तरफ सिमट गई, वो सहम गई थी। उसके लबों पर अभी तक उसकी पपड़ी जमे होठ सरक रहे थे। जब फातो ने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो उस पर बरस पड़ा। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम भूतनी हो, डायन हो, मेरा कलेजा निकालकर चबाना चाहती हो? जाओ जाओ। ये कहते कहते उसने अपने वजनी सर को दोनों हाथों में थाम लिया जैसे वो गिर पड़ेगा और होले होले बड़बड़ाने लगा, फातो मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं बस सिर्फ एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत है, इसलिए कि तुमसे मोहब्बत की जाए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं इसलिए कि तुम नफरत के काबिल हो। तुम औरत नहीं हो, एक सालिम मकान हो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। मुझे तुम्हारे सब कमरों से मोहब्बत है इसलिए कि वो गलीज है, शिकस्ता है, और क्या अजीब बात नहीं। फातो खामोश रही। उस पर अभी तक आहानी गिरफ्त और उसके खौफनाक बौसे का असर मौजूद था। वो उठकर कमरे के बाहर जाने का इरादा ही कर रही थी कि उसने फिर हिजायनी कैफियत से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। फातो ने उसकी तरफ देखा और वो किसी गैर मरई आदमी से बात कर रहा था। बिस्तर पर उसने बड़ी मुश्किल से करवट बदली, फातो को अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा और पूछा, क्या कर रही हो तुम? उसने कुछ भी नहीं कहा था इसलिए वो खामोश रही। फातो की खामोशी से उसे ख्याल आया कि हिजायनी कैफियत में वो बेशुमार बातें कर चुका है। जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी इससे कर चुका है तो उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आया। इसी गुस्से में वो फातो से मुखातिब हुआ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो बिल्कुल गलत है, मुझे तुमसे नफरत है। फातो ने सिर्फ इतना कहा, जी ठीक होगा। वो कड़का, सिर्फ ठीक नहीं 100% हकीकत है, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। जाओ, चली जाओ मेरे कमरे से, खबरदार जो कभी इधर का रुख किया। फातो ने हस्बे मामूल नरम लहजे में जवाब दिया, जी अच्छा। ये कहकर वो जाने लगी कि उसने उसे रोक लिया, ठहरो एक बात सुनती जाओ, फरमाइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जा सकती हो, फातो ने कहा। मैं जा तो रही थी, आपने खुद मुझे रोका। ये कहकर उसने बर्तन उठाए और कमरे से निकलने लगी, मगर उसने फिर से उसे आवाज देकर रोका, ठहरो, मैं एक बात तुमसे कहना भूल गया हूँ। फातो ने बर्तन तिबाई पर रखे और उससे कहा, क्या बात है, बता दीजिए, मुझे और भी काम करने हैं। वो सोचने लगा कि उसने फातो को रोका क्यों था, उसे इससे ऐसी कौन सी अहम बात करनी थी कि फातो ने उससे कहा, मियां साहब मैं खड़ी इंतजार कर रही हूं, आपको मुझे क्या कहना था? कुछ भी तो नहीं कहना था, मेरा मतलब है कहना तो कुछ था मगर भूल गया। फातो ने बर्तन तिपाई पर रखे, आप याद कर लीजिए, मैं यहीं खड़ी हूं। उसने आंख बंद कर ली और याद करने लगा। उसे फातो से ये कहना था कि उसके दिमाग में बेशुमार ख्यालात थे। दरअसल ये कहना चाहता था कि फातो उसके घर से चली जाए इसलिए कि वो उससे इस कदर नफरत करता है कि वो नफरत बेपनाह मोहब्बत में तब्दील हो गई है। उसने थोड़े अरसे बाद आंख खोली, फातो तिपाई के साथ खड़ी थी। उसने समझा कि शायद ये ख्वाब है, पर जब उसने इधर उधर का जायजा लिया तो उसे मालूम हुआ कि ख्वाब नहीं हकीकत है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि फातो क्यों बुत की मानिंद उसकी चारपाई के साथ खड़ी है। उसने कहा, तू यहां खड़ी क्या कर रही है? फातो ने जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात कहनी है। वो चिढ़ गया, झुंझला कर बोला, तुमसे मुझे कौन सी जरूरी बात कहनी थी? दूर हट जाओ मेरी नजरों से। फातो ने तश्वीशनाक नजरों से उसकी तरफ देखा, ऐसा लगता था कि आपका बुखार तेज हो गया है, मैं बीबी जी से जाके कहती हूँ कि डॉक्टर को बुला ले। वो और ज्यादा चिढ़ गया, डॉक्टर आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा और तुम्हारा तो इन दोनों हाथों से गला घोट दूंगा। फातो ने अपने लहजे को और ज्यादा नरम बनाकर कहा, आप अभी घोट डालिए, मैं अपनी जिंदगी से उकता चुकी हूँ। उसने पूछा, क्यों? बस अब जी नहीं चाहता जिंदा रहने को। मियाँ साहब, आपको मालूम नहीं मैं ये दिन कैसे गुजार रही हूँ। अल्लाह की कसम, एक एक पल जहर का घूंट है। खुदा के लिए आप मेरा गला घोटकर मुझे मार दीजिए। वो लिहाफ के अंदर कांपने लगा। फातो, जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। फातो ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं जाने लगती हूँ पर आप मुझे रोक लेते हैं। उसने भुन्ना कर कहा, कौन हराम ज्यादा तुझे रोकता है, जा दूर हो जा। फातो जाने लगी तो उसने फिर से उसे रोक लिया, ठहरो। वो ठहर गई। फरमाइए, तुम निहायत वाहियात औरत हो, खुदा तुम्हें गारत करे, जाओ अब मेरी नजरों से गायब हो जाओ। फातो बर्तन उठाकर चली गई। एक महीने बाद मोहल्ले में शोर मचा कि फातो किसी के साथ भाग गई है। सब उसको बुरा भला कह रहे थे। औरतें खास तौर पर उसके किरदार में कीड़े डाल रही थी और फातो अपने मियाँ साहब के साथ कलकत्ते में अजद वाजी जिंदगी बसर कर रही थी। उसका शौहर हर रोज उससे कहता था, फातिमा मुझे तुमसे नफरत है, और वो मुस्कुराकर जवाब देती, ये नफरत अगर ना होती तो मेरी जिंदगी कैसे सवरती, आप मुझसे सारी उम्र नफरत ही करते रहिए।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।